ओम शांति। तो आज का विषय है ब्लेम गेम, इसको फ्री फ्रॉम ब्लेम गेम, आरोप लगाने का जो खेल है। एक दो के ऊपर ब्लेम लगाते हैं, उससे मुक्ति कैसे रहे, मुक्त कैसे रहे। चाहे ब्लेम हम लगाते हैं किसी पर या कोई हमारे पर लगाता है, दोनों पक्ष की तरफ से लगने वाले ब्लेम से कैसे हम मुक्त रहें, स्वतंत्र रहें, उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो वैसे देखते हैं संसार में ये ब्लेम गेम जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और सबसे ज्यादा ब्लेम गेम कहाँ देखने में आता है? पॉलिटिशियन में, राजनीति में। तो राजनीति में ब्लेम गेम जो है वो इतना चरम सीमा तक पहुंच गया है कि पूरे देश के सामने संसद चल रही होती है, लेकिन फिर भी एक दो के ऊपर कितनी हाथापाई करने की नौबत भी आ जाती है, कर देते हैं। बल्कि गेम माना खेल, हार और जीत जिसमें होती है, तो वहां भी उसी तरह से राजनीति में अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए ब्लेम गेम करते हैं। तो राजनीति जैसे एक अखाड़ा बन गया है, और उसका प्रभाव पूरे देश पर कितना विपरीत उसका असर पड़ता है, और जनता को कितनी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो ये जो ब्लेम गेम का प्रभाव है, ये जैसे सिर चढ़कर बोल रहा है सबके ऊपर। और इस ब्लेम गेम से शायद संसार का कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा है, चाहे वो राजनीति है, चाहे वो अध्यात्म के क्षेत्र में भी दिन प्रतिदिन पढ़ते जा रहा है, खेलों के क्षेत्र में भी कितना ब्लेम गेम होता है, परिवारों में कितना होता है, रिश्तों में कितना होता है, ऑफिस डिपार्टमेंट। तो ये ब्लेम गेम जो है ये बहुत घातक है, इससे ना केवल हमारा ही नुकसान होता है बल्कि समाज भी इससे परेशान होता है। तो इस ब्लेम गेम से मुक्ति कैसे पाए, और कहां कहां ब्लेम लगता है हमारे ऊपर, या हम कहां कहां लगाते हैं अपनी कमी कमजोरियों को छिपाने के लिए। जैसे किसी व्यक्ति पर ब्लेम लगाते हैं कि इसके कारण ऐसा हो रहा है, इस व्यक्ति के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, ये व्यक्ति ही मेरे पुरुषार्थ में बाधक है, अगर ये व्यक्ति ना हो तो मैं आगे जा सकता हूं, इस व्यक्ति के कारण ही हमारी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। तो व्यक्ति के ऊपर ब्लेम लगाते हैं, चाहे हम लगा रहे हैं चाहे कोई सामने वाला लगा रहा है। कोई बात आ जाती है, उस बात को पकड़ के बैठ जाते हैं, कहने वाला बात कह के चला गया, लेकिन उस बात को हम पकड़ के बैठे हुए हैं और उसी पर ब्लेम लगा रहे हैं, उसी को पकड़ के बैठे हुए हैं कि उसने फलाना समय में ये बात कही थी और उसके कारण हमारी स्थिति हलचल में आ जाती है। उस समय भी समय को पकड़ के बैठ जाते हैं कि समय ठीक नहीं चल रहा है, समय के ऊपर ब्लेम लगाते हैं कि वक्त ठीक नहीं है, हमारे जमाने में कैसा होता था, अब समय कैसा आ गया है, कोई किसी की सुनता नहीं है। तो समय को भी हम पकड़ के बैठ जाते हैं, या किसी स्थान पर भी ब्लेम लगाते हैं, ये स्थान ही ऐसा है, वास्तु दोष है इसमें, उसको हम चेक कराते रहते हैं। तो स्थान के ऊपर भी ब्लेम लगाते रहते हैं, कर्राठी जमीन है, बंजर जमीन है, इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, यहाँ कोई सेवा नहीं हो रही है, तो उस स्थान को भी पकड़ कर बैठ जाते हैं। फिर संबंधों के ऊपर ब्लेम गेम, तो संबंधों को भी पकड़ के बैठे रहते हैं, और संबंधों में बहुत खतरनाक है, जिससे रिश्तों में दूरियां बढ़ती जाती है दिन प्रतिदिन। जो रिश्तों में आपसी मधुरता होनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए, दिन प्रतिदिन दरारें पड़ती जा रही हैं, दूरियां बढ़ती जा रही हैं, एक दो की तरफ देखते तक नहीं है। तो ब्लेम लगाने से विशेषकर परिवारों में ज्यादा होता है, अगर कोई किसी के ऊपर ब्लेम लगाता है तो उस ब्लेम लगाने से पूरे परिवार का माहौल ही बिगड़ जाता है। और जैसे सास बहू का होता है, या बहुओं का आपस में होता है, या फिर कोई भाइयों का आपस में हो सकता है, तो ब्लेम से परिवार, जैसे परिवार नहीं रहा, बार बन गया, बार अर्थात युद्ध का मैदान बन गया, और पूरा दिन फिर लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। तो जो ब्लेम गेम में खतरनाक है, जिससे हमको बच के रहना है। तो ये स्थान, फिर समय, फिर व्यक्ति, वस्तु, कोई वस्तु के ऊपर ब्लेम लगाते हैं, ये वस्तु फलानी वस्तु मुझे मिली नहीं है, या ये इसको ज्यादा मिल गई है, मुझे कम मिली है, ये भी हम ब्लेम लगाते रहते हैं। फिर संबंधों में हो गया, बीमारियां, बीमारियों पर ब्लेम लगाते हैं, बीमारी मुझे ही क्यों आई, हाँ मुझे, मेरे भाग्य में ऐसा, मेरे नसीब में ऐसा है, मुझे बार बार ये बीमारी आती है, इस बीमारी के कारण हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये बीमारी नहीं होती तो हम आगे बढ़ते, या हमारे परिवार में ही बीमारी रहती है, या किसी की बीमारी को ठीक करने के लिए हमारा टाइम चला जाता है, तो हम उन चीजों को कोसते रहते हैं। तो फिर ये बीमारी है, फिर बातें होगी, परिस्थितियां आ गई, कई प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, अचानक कोई परिस्थिति आ गिरती है हमको, या चाहे बीमारी नहीं है, कोई हम यहां से जा रहे हैं, मान लीजिए हमारा सारे दिन की दिनचर्या पूरी हुई है और कोई अचानक आ जाता है, हमारा ज्ञानियों का टाइम है, तो व्यक्ति सामने परिस्थिति के रूप में आकर उभर जाता है हमारे सामने, तो हम सोचते हैं हमारे सामने परिस्थिति आती है, देखो बाकी सारे योग में चले गए और मैं रह गया इधर ही, वो सारे योग कर रहे और मेरा योग नहीं, मेरा योग का टाइम चला गया। तो उन परिस्थितियां जो अचानक हमें आ घेरती है, उन परिस्थितियों से भी कहीं ना कहीं उन पर ब्लेम लगाते हैं कि हमारे एक साथ ही क्यों आती है ऐसी परिस्थिति। फिर कोई पद को प्राप्त करने का ब्लेम कि ये व्यक्ति आने से ना मेरा पद छिन गया है, अगर ये नहीं आता ना तो मेरा पद बना रहता, या उस पद को हड़पने के लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, तो उस पर हम ब्लेम लगाते रहते हैं। फिर मौसम के ऊपर ब्लेम लगाते हैं, आज सर्दी है, ठंडी है, गर्मी है, सर्दी जो है मुड़ मुड़ कर वापस आ रही है, अभी जाती है फिर आ जाती है, कपड़े संभालते हैं फिर हम निकालने पड़ते हैं, तो मौसम के ऊपर ब्लेम। प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उस पर ही हम ब्लेम लगाते रहते हैं, तो अर्थात भगवान पर भी ब्लेम लगाते रहते हैं। हाँ जी, समय वक्त, हाँ समय खराब चल रहा है, वो तो पहले खराब हो गया, अब ठीक हो गया समय, तो भगवान के ऊपर भी ब्लेम कि बाबा मेरी सुनता ही नहीं है, बाकी सबके सुनता है, बोला पहले तो सुनता था, आजकल बाबा भी पता नहीं क्या हो गया, बाबा का मूड कैसा हो गया, हमारी सुनता ही नहीं है, पहले तो बहुत नशा चढ़ा रहता था बाबा जैसे, हमारे अंग संग रहता था, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया है, हाँ जो काम बाबा को हम कहते थे हर काम करता था, अब नहीं करता है, तो अब हो सकता है हम उसके अंग संग नहीं रहते हैं, वो तो हमारे अंग संग रहता है, लेकिन हमने किसी और के संग को पकड़ लिए हैं, तो वो ब्लेम लगाते रहते हैं भगवान के ऊपर भी, भगवान की शिक्षाओं के ऊपर भी, तो इस तरह से ये ब्लेम जो है जी, ड्रामा के ऊपर ब्लेम, हाँ ड्रामा ऐसा क्यों बना हुआ है, ऐसा नहीं बनना चाहिए था, ये ड्रामा ठीक नहीं है, ये ड्रामा के ऊपर ब्लेम लगाते हैं, मेरा पार्ट ऐसा है, मेरा पार्ट ऐसा नहीं होना चाहिए था, अच्छा पार्ट, देखो दूसरों का कितना अच्छा पार्ट है, मेरा ही पार्ट क्यों ऐसा है, तो ये अनेक प्रकार के ब्लेम है। अब हम देखेंगे इस ब्लेम गेम से मुक्ति पाने की युक्ति क्या है, इससे स्वतंत्र कैसे होना है, तो कैसे स्वतंत्र होंगे, क्योंकि ब्लेम तो लगेंगे, बिना ब्लेम के हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो कैसे स्वतंत्र होंगे। सबसे पहले इसको स्वीकारना है, या दूसरी बात, दोनों बातें, स्वीकारना भी और नहीं भी स्वीकारना है, पहले तो अपने पार्ट को स्वीकारना है और उसको समझना है कि हमारा पार्ट इस ड्रामा में कैसा है, श्रेष्ठ उसको कैसे बनाया जा सकता है, उस पर चिंतन करना है। दूसरा स्वीकारना ये नहीं है कि अगर कोई हमारे पर ब्लेम लगाता है तो हमें उसको स्वीकारना नहीं है, बिना किसी कोई प्रमाणित तथ्यों के आधार के बिना उसको हमको स्वीकारना नहीं है, क्योंकि कहने वाले तो कहते रहेंगे और हम भी तो पहले इस जन्म से पूर्व कई तरह के ब्लेम लगाते थे, क्योंकि मनुष्य की अधिकतर ये आदत होती है अपनी कमी कमजोरियों को छिपाने के लिए अनेक प्रकार के बहाने ढूंढता है, ब्लेम लगाता है दूसरे के ऊपर, ताकि हमारी जो पद प्रतिष्ठा के ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमको दोनों तरफ से देखना है कि कौन सी चीज हमको स्वीकारनी है और कौन सी चीज नहीं स्वीकारनी है। अगर कोई ब्लेम लगाता है तो बिना किसी प्रमाण के वो हमको स्वीकारना नहीं है। अगर हमारे में है वो, अगर सामने वाला लगा रहा है और हमारे में वो कमी कमजोरी है, तो उसको स्वीकार कर लेना है और वहां से हमको कुछ सीख के आगे बढ़ जाना है। तो पहली बात है स्वीकारना या नहीं स्वीकारना। दूसरी बात है हमको स्मृति में रखना है कि हमने इस यूनिवर्सिटी में कदम किस लिए रखा है, यहाँ दाखिला किसके लिए लिया। हमें किसी के ऊपर ब्लेम लगाने के लिए हमने दाखिला नहीं लिया है। हमारे यहाँ के क्या दायित्व हैं, किस उद्देश्य से लेकर हम इस ब्राह्मण जन्म में हमने कदम रखा है, तो हमें स्मृति रखनी है, स्मृति स्वरूप होकर रहना है, ताकि स्मृति रहेगी हमारी अवस्था दिन प्रतिदिन प्रगति को पाती जाएगी। तो दूसरी बात है स्मृति, और तीसरी बात है समाधान करना उसका। अगर कोई समस्या आ भी जाती है, हमारे पर कोई ब्लेम लगा रहा है, किसी अन्य के ऊपर ब्लेम लगा रहा है और हमें उसका पता है, तो उन समस्याओं का हमको समाधान करना है, ना कि उनको हमको वातावरण में फैलाना है, ना कि उस माहौल को बिगाड़ना है। क्योंकि हमारा कर्तव्य है, बाबा ने कहा बातों को समेटने का टाइम है, अभी विस्तार में जाने का टाइम नहीं है। तो अगर हम इस विस्तार में जाते जाएंगे, उन बातों को फैलाएंगे, उस वातावरण को खराब करने के निमित्त बनेंगे, तो भी हमारे ऊपर ब्लेम गेम का आरोप सिद्ध हो जाएगा और उसके भी हम कहीं ना कहीं फिर हिस्सेदारी हमारी हो जाएगी, हम भी कहीं पाप के भागी बन जाएंगे। तो हमको समस्या का समाधान करना है, जो बाबा ने कहा कारण को निवारण करो, निर्वाण निवारण कर निर्वाण धाम स्थिति में जाने का भी तैयारी करो। तो हमको समाधान करना है। चौथी बात, हमें इस ड्रामा को साक्षी होकर देखना है। अगर कोई कुछ कर भी रहा है और हमको पता है, तो बाबा ने कहा एक बार ऊपर आप दे दो, दोबारा उसके बारे में सोचो नहीं, क्योंकि हर एक आत्मा का इस ड्रामा में अपना अपना पार्ट है, किसी के पार्ट को कोई चेंज नहीं कर सकता है। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। अगर सभी एक जैसा पुरुषार्थ करें तो बाबा कहते हैं सभी राजा बन जाएं तो प्रजा कौन बनेगा। इसलिए हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, सभी इसमें संपूर्ण निर्दोष हैं, किसी का कोई दोष नहीं है। तो इस ड्रामा के ज्ञान को अगर हम बुद्धि में रखते हैं, तो साक्षी अवस्था बनाकर रखते हैं, तो भी हम कहीं ना कहीं इस ब्लेम गेम से स्वतंत्र अनुभव करेंगे, मुक्त अनुभव करेंगे। और नेक्स्ट है सहन शक्ति, क्योंकि इस ड्रामा में अनेक प्रकार की परिस्थितियां आएंगी, तो बहुत सारी बातें सहन करनी पड़ेंगी, आरोप झूठे आरोप हमारे पर लगाए जाएंगे, विशेषकर पवित्रता के हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं छोटी मोटी ऐसी बातें होती हैं जिनसे हमको कोई हमारा दूर दूर से उन बातों का वास्ता ही नहीं है, चोरी के संस्कार हो गए या कोई भी एक दो की बातों को कहते कि ये तो ऐसे जैसे कहीं हम जाते हैं, अगर किसी डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं और हम किसी काम से गए हैं या कहीं भी गए, बाहर गए, परिवार में गए हैं, वहां सभा में बैठे हैं, वहां उनकी चर्चा चल रही है, खाने पीने की पार्टी चल रही है, और हम किसी काम के लिए थोड़ा सा वहां जाते हैं, तो कल को दूसरा ब्लेम भी लगा, ये भी पार्टी उसी पार्टी में शामिल है, खाने पीने वाले लोग ही है भी, या कोई टीवी देख रहा है और हम किसी काम से बाहर गए हैं तो बोलेगा ये व्यक्ति तो टीवी देखता है और हम तो देखते नहीं है, ये व्यक्ति सीरियल देख रहा है हम तो देखते नहीं है, हो सकता वो व्यक्ति किसी काम के लिए गया हो उधर। तो किसी तरह से भी झूठे छोटे छोटे आरोप लग सकते हैं, तो इन सभी आरोपों का सामना करने के लिए सहन शक्ति चाहिए। जितनी सहन शक्ति होगी उतना हम इस चीज से मुक्त रहेंगे और अपनी स्थिति को बेहतर बनाकर रखने में कामयाब होंगे। तो ये था सहन शक्ति। नेक्स्ट है स्वोन्नति के में हमको व्यस्त रहना है, क्योंकि स्वोन्नति अगर नहीं होगी, स्वोन्नति के तरफ हमारा ध्यान नहीं रहेगा, तो भी हम ब्लेम गेम से ग्रसित उतरेंगे और अनेक प्रकार की बीमारियां हमें इस ब्लेम गेम से प्रभावित करती रहेंगी, हमारी स्थिति डगमगाती रहेगी। तो हमें स्वोन्नति का ख्याल रखना है। बाबा ने अनेक मुरलियों में अनेक प्रकार के स्वोन्नति के तरीके बताते हैं, तो हमको खुद ही वो खोजने हैं, खुद ही उनका निर्माण करना है कि किस तरीके से हमारी स्वोन्नति हो सकती है। अगर स्वोन्नति में कोई बाधा है तो कौन कौन से वो ऐसे ट्रिगर प्वाइंट हैं जो हमारी स्वोन्नति को रोक रहे हैं, तो हमें खुद ही देखना है कि स्वोन्नति में व्यस्त कैसे हों। जितना हम स्वोन्नति में व्यस्त होंगे उतना दूसरों की उन्नति का भी ख्याल आएगा। अगर हम स्वयं का कल्याण नहीं करेंगे तो दूसरों का कल्याण भी कैसे करेंगे। कल परसों तो बात था ना बाबा ने, कौन भाग्यशाली बच्चे कौन से हैं, कौन से बच्चे थे जो स्वयं का भी कल्याण करेंगे और दूसरों का कल्याण किए बिना भी नहीं रह सकते। तीन चार दिन पहले मुरली में था। तो हमको कल्याण का रास्ता ढूंढना है कि स्वोन्नति हमारी कैसे हो, तो ताकि हम इन चीजों से छोटी मोटी बातों से बचे रहें। और नेक्स्ट है समरसता का भाव सभी के साथ। अगर चाहे हमारे पर कोई अगर ब्लेम लगाता भी है तो हमारी भावना उसके प्रति कम नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। कोई कैसा भी है, बाबा ने कहा काले कोयले जैसा भी है, हमारे ऊपर कितने बड़े बड़े लांछन भी लगा रहा है, लेकिन फिर भी हमारी भावना उसके प्रति भी नीचे नहीं जानी चाहिए, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जाननी चाहिए, क्योंकि वो हमारे परिवार का ही हिस्सा है, वो हमारे परिवार का ही मेंबर है, हमारे परिवार का ही भाती है। तो अगर वो हमारे परिवार का है तो फिर कैसे उसके प्रति हम नेगेटिव रखेंगे। तो सबको अपना समझना पड़ेगा, कोई कैसा भी है, तो हम पुरुषार्थ में आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है शुभ भावना शुभकामना। शुभ भावना शुभकामना भी रखना बहुत ऊंची बात है सबके प्रति, कोई कैसा भी हो, कितना भी उपद्रवी हो। भावने का रावण जैसा भी क्यों ना, रावण से भी ज्यादा क्यों ना हो, है जी, रावण से भी तीखा हो, तो उसके प्रति भी शुभ भावना शुभकामना रखना कितनी बड़ी बात है ये। और तो ये परिस्थिति तो हमारे सामने आनी चाहिए, तभी तो हमें हमारी स्थिति का पता चलेगा। तो इस चीज को हमको ध्यान में रखेंगे तो फिर भी हम इस ब्लेम गेम से मुक्त हो सकते हैं। तो शुभ भावना के वाइब्रेशन हम निरंतर देते रहे। नेक्स्ट है स्थिति। अगर हम हमारे पर कोई ब्लेम लगाता तो हमारी स्थिति की परीक्षा है वो, तो स्थिति को हमको डगमग नहीं करना है, अपनी स्वस्थिति पर स्थित रहना है। बाबा ने कहना जो बच्चे स्वस्थिति की सीट पर सेट रहेंगे तो वो परिस्थिति उनके आगे कैसी होगी, पेपर टाइगर के समान बन जाएगी, वो नीचे दब जाएगी। तो स्वस्थिति भी हमको बनाकर रखनी है। तो इन चीजों का अगर चिंतन करते रहेंगे तो हम ब्लेम गेम से मुक्त हो जाएंगे, अदरवाइज उसको पकड़ के बैठेंगे तो मन में अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, संकल्पों से लेकर तो वो कर्मों तक भी आ जाती हैं और हमारे जीवन निरस बन जाएगा। तो अगर इसको हमको पकड़ के नहीं रखना है, क्योंकि इतना सुंदर ज्ञान मिला है, अगर हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे तो ब्लेम गेम हमको प्रभावित करती रहेगी और कहीं ना कहीं तो लगेगा लगेगा आरोप, बिना आरोप लगे हम आगे बढ़ेंगे भी नहीं, और आरोप लगने ही चाहिए तभी तो हमें अपनी स्थिति का पता लगेगा। कलंगीधर कैसे बनेंगे, कलंगीधर और साथ में था मस्त कलंदर रहेंगे, मस्त कलंदर कब रहेंगे, जब ये सारी बातें करेंगे। तो ये कौन कौन सी बातें बताई, 10 बातें बताई जिनसे जिनको हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो ब्लेम गेम से हम मुक्त रह सकते हैं। तो सबसे पहली बात थी स्वीकार करना और स्वीकार नहीं करना, दोनों बात थी उसमें, कौन सी बात को हमको स्वीकार करना है कौन सी बात को नहीं स्वीकार करना है, ये हमारे ऊपर हमें समझ चाहिए उस समय, किस समय स्वीकार करना है किस समय नहीं स्वीकार करना है। जैसे बताया था ना उस दिन बालक और मालक का बैलेंस, कहां बालक बनना है कहां मालिक बनना है। कोई भी हमको अगर विचार देना है तो मालिक बनकर हम दे दें और उसको फिर बाद में जब फाइनल होता है उसको बालक बनकर हमको स्वीकार कर लेना है। तो ये स्वीकार करना है और कहां नहीं करना है तो हमको पहले पता होना चाहिए था, होना चाहिए। और दूसरी बात स्मृति, स्मृति रखनी है कि हम इस ब्राह्मण जन्म ब्राह्मण जीवन में हम आए हैं, हमारा जन्म किस लिए, लौकिक जन्म लौकिक कार्यों के लिए या अलौकिक कार्यों के लिए हुआ है। लौकिक कार्य तो बहुत किए संसार में, अब हमारा हर कार्य अलौकिक है, लौकिक में रहते हुए भी अलौकिक कार्य, जो भी जिम्मेवारियां हमको मिली हैं वो केवल सेवा अर्थ है। तो हमको ये भी देखना है कि हम हमारी स्मृति रहनी चाहिए निरंतर स्मृति। तो स्मृति अगर स्वरूप बनते रहेंगे, समर्थ स्मृतियों का खजाना हमारे पास होगा तो भी हम ब्लेम गेम से मुक्त रह सकते हैं। तीसरी बात समाधान, समस्याओं का समाधान करना है, कारण का निवारण करना है, कारण नहीं बनना है, कारण को कारण शब्द को बाबा कहते खत्म कर दो भी, ये कारण शब्द क्या है, नीचे गिराने वाला है, तो इसको और ऊपर चढ़ाने वाला कौन है, निवारण। तो निवारण शब्द को पकड़ के रखना है, केवल शब्द नहीं पकड़ना बल्कि निवारण करना है, किस तरीके से हम उस समस्या से बाहर निकल सकते हैं, वो कारण ना उस कारण को सामने रखते उसका निवारण ढूंढना है। तो और चौथी बात साक्षी भाव, जैसे बाबा हर एक के पार्ट को साक्षी हो देखते हैं, ऐसे भी हमें हर आत्मा के पार्ट को साक्षी होकर देखने का अभ्यास करना है, ताकि साक्षी होकर रहेंगे तो आकाश भी ठीक देख रहेंगे, साक्षी होकर रहेंगे तो हमारी स्थिति भी दिन प्रतिदिन अच्छी बनती जाएगी, पुरुषार्थ अच्छा होता जाएगा। खुद को भी साक्षी होकर देखना है, क्या क्या देखना खुद में साक्षी होगी, हाँ, और अगर खुद पर भी साक्षी अवस्था का ध्यान रहेगा हमारे ऊपर तो भी हमको देखना है कि कहाँ कहाँ हमारी जो भावना डगमगा रही है या मन की जो स्थिति है नीचे आ रही है और उसको ऊपर कैसे करना है, उससे भी हमको अगर असफलता मिल रही है तो उसको भी थोड़ा साक्षी उसको पकड़ के नहीं बैठ जाना है। नहीं तो होता है कि कुछ दिन तो पुरुषार्थ अच्छा चलता है अचानक कोई ऐसी परिस्थितियां आ गिरती है, प्रसाद थोड़ा नीचे चला जाता है तो वहीं पकड़ के बैठ जाते हैं। अभी अभी मैं ऊपर कैसे जाऊंगा, वो छोड़ देने का है। जैसे कुछ दिन पहले था ना, बाबा ने कहा ये ब्राह्मण जन्म, या क्लास में शायद बताता कि आज ही हमारा जन्म हुआ है, इस ब्राह्मण जन्म जीवन में हमने आज ही कदम रखा है। तो अगर नवीनता रहेगी, जैसे ब्राह्मण जन्म लेते हमारा कितना उमंग उत्साह रहता है, कितना बाबा के प्रति प्यार रहता है, कितना एक जोश जुनून जज्बा होता है कुछ कर गुजरने का, तो उसी तरह से हमको साक्षी होकर देखना है परिस्थितियां जो बीत गई उसको पकड़ के नहीं बैठना है, पास्ट इज पास्ट। तो ये है साक्षी भाव। इस ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, कोई किसी के पार्ट को या सीट को छीन नहीं सकता है। जो उसको पसंद है वो हमको पसंद होना चाहिए। इसमें सब संपूर्ण निर्दोष हैं, कोई किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहा है, और अगर कोई लगा रहा है तो हमने भी पहले लगाया हुआ है, क्योंकि बिना क्रिया के प्रतिक्रिया तो होती नहीं है। तो ये साक्षी भाव। नेक्स्ट सहन शक्ति। सहन शक्ति भी बहुत जरूरी है। जितनी सहन शक्ति को हम बढ़ाएंगे, बाबा कहते सहन झुक झुक मर मर सिख सिख, है ना। तो ये सहन करना भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे मां कैसे बच्चों की अनेक प्रकार की बातों को सहन कर लेती है, माँ बाप बच्चों की बातों को बाहर नहीं फैलाते हैं, वो कितना भी करें लेकिन उनको सुधारने का प्रयास करते हैं, उनके प्रति हमेशा उनके मन में कल्याण की भावना बनी रहती है। तो इसी तरह से भी हमारा परिवार है, परिवार की बात को बाहर फैलाने के बजाय उसको समाप्त करना है, तो सहन करना है हमको। कोई भी छोटी मोटी बातें आती है, बाबा कहते हैं एक चुप तो सौ सुख, अंतर्मुखी सदा सुखी। उसमें हम अगर चुप रहें तो वो हमारी ही मानता है, अगर बात को फैलाएं तो वो हमारी मूर्खता है। तो बात को फैलाने के बजाय उनको समाना है, उनको सहन करना है और आगे बढ़ना है। और नेक्स्ट, शुभ भावना शुभकामना सबके प्रति रखना, कितनी बड़ी बात है ये। तो शुभ भावनाओं का स्टॉक हमारे अंदर होना चाहिए। हमारे शुभ भावना मुख से तो ठीक है, लेकिन मन से शुभ भावना उनके प्रति। तो जो भी हम योगाभ्यास करते हैं और हमें पता है इन आत्माओं की आदत ब्लेम गेम की है, तो उनको इमर्ज करके हम जैसे परमात्म प्यार के शुभ वाइब्रेशन उनके ऊपर जैसे बरसात होती रहे, उनको उस लाइट में रखें। क्योंकि वो आत्माएं ब्लेम क्यों लगाती हैं, क्योंकि उस संस्कारों से मुक्त होने की ताकत नहीं है उसके अंदर। तो उन संस्कारों से मुक्त अगर हम हुए हैं तो दूसरों को मुक्त करना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। तो दूसरों के प्रति शुभ भावना कामना रख के उनको योग में अच्छे अच्छे वाइब्रेशन देके परमात्म प्यार से उनको भरपूर करके, और अगर हम मिलते हैं उनसे भी तो उस नेक्स्ट जो बताया समरसता का भाव, उनसे हम ऐसे ना घृणित भाव से ना मिले, उनको ये पता लगे कि सच में ये हमारे परिवार का ही है और हमारे प्रति अच्छा सोचते हैं। भले सामने वाला हमारे प्रति अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचता है, हमारी टांग खींचने की कोशिश कर रहा है या हमारे में फॉल्ट निकालने में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हम उसके प्रति शुभ भावना शुभ कामना पहले समान संपर्क में आते हुए रखना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल में स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से तो मन से रखेंगे, लेकिन वैसे भी, और हमने कई बार देखा है अगर हम ठीक रखते हैं तो सामने वाला एक ना एक दिन बदल जाता है। भले वो ब्लेम गेम लगाता है लेकिन उसको मन में तो अंदर में खाता रहता है, वो चैन से नहीं जी पाता है, और एक ना एक दिन वो अपने आप ही नतमस्तक हो जाता है। और पता तो उनको भी होता है कि ब्लेम गेम का जो खेल है बहुत घिनौना है, खतरनाक है। इससे ना केवल उसका अल्पकाल का फायदा तो हो सकता है, लेकिन सदाकाल की सुख शांति कहां मिलेगी, उसका चैन छिन जाएगा, बेचैनी में तब्दील हो जाएगा। तो इस तरह से शुभ भावना शुभ कामना रखेंगे तो भी हम इस ब्लेम गेम से ना केवल स्वयं को मुक्त कर सकते हैं बल्कि दूसरों को भी मुक्त करने का हम पुण्य कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ जी, मस्त कलंदर। हाँ, और सोन्नति के तरीके ढूंढने हैं, है ना। जैसे उस मुरली में था ना, बाबा ने कहा आत्मा की उन्नति के तरीके कितने बताए थे, 100 तरीके। तो हमने उसी मुरली से 100 तरीके ढूंढ दिए थे। तो वो तो खैर एक ही मुरली से थे, कुछ भी हम बना सकते हैं। तो अपनी उन्नति के तरीके ढूंढने हैं। अनेक मुरलियों में अनेक प्रकार के पॉइंट आते हैं, कल परसों तक ज्ञान धारण जो है उनकी निशानियां क्या है। तो इस तरह से मुरलियों में बहुत सारी बातें आती हैं। आज दो प्रकार के बल बताए मुरली में, कौन कौन से जिनसे आत्मा पावन बनेगी। एक है याद का बल, दूसरा सजाओं का बल। तो अभी और कौन कौन से बल हो सकते हैं इसमें हम सोनति के अगर ढूंढेंगे, कितने प्रकार के बल है, ज्ञान का बल है, योग का बल है, सजाओं का बल है, पवित्रता का बल है, दुआओं का बल है, धारणाओं का बल है, सेवाओं का भी बल है, पश्चाताप का भी बल है। नया नया अभी अनुसंधान हुआ है। तो ये बल कितने प्रकार के हो सकते हैं, बाहुबल भी है, धन का भी बल है, पोजीशन का बल, सत्ता का बल है, दान पुण्य का भी बल मिलता है, पुण्य का बल। हाँ, तो ये हमको चिंतन करना स्व उन्नति के लिए, क्योंकि एक ही दो ही शब्दों को पकड़ के बैठने के बजाय और कुछ चीजें ढूंढने में हम अपने को बिजी कर देंगे तो आत्मा में सामर्थ्य आएगा, शक्ति आएगी। तो यह है स्व उन्नति के तरीके ढूंढने हमको, ताकि स्व उन्नति करते करते हम इन चीजों से मुक्त हो जाएंगे, ब्लेम गेम से। और हाँ, स्थिति, स्थिति को परखने के लिए हमारे ऊपर अगर आरोप लगता है तो हम ये समझे कि हमारी स्थिति को परखा जा रहा है। अगर हमारी स्थिति डामाडोल हो रही है तो उसको और बेहतर कैसे बनाएं, कैसे ज्ञान योग धारणा में और ज्यादा समय दें, हम अपने उन्नति के लिए और उसमें इन्वॉल्व हो जाए ज्यादा से ज्यादा। तो स्थिति के ऊपर भी हमारी ये परीक्षा है, इम्तिहान है, तो अपनी स्थिति को बेहतर बनाना है। और सत्य पर विश्वास, सत्य की नाव हिलेगी डूलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, है ना। और सत्य के ऊपर कौन कौन सी कहावतें हैं, सच तो बिठो नच, और सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य में विजयते, और सत्य को सिद्ध करना नहीं पड़ता बल्कि स्वयं सिद्ध है वो। और एक और है, सच्चे दिल पर साहब राजी, और सच तो बिठो नच, है सत्य के सूरज को सत्य के बादल छिपा नहीं सकते। और लास्ट में एक है, राम नाम सत है, ये सत्य फाइनल तो यही है। तो ये सत्य के ऊपर है, तो ये वाली चीज है। और क्या हो सकता है, हाँ, हम दूसरों पर ब्लेम ना लगाए। अगर हम ये चीजें दूसरों पर लागू कर रहे हैं तो वो पहले अपने पर लागू करनी है ये चीजें पहले, इसलिए हमने बोला कि दोनों तरफ से है ब्लेम, ये नहीं कि सामने, हम भी कहीं ना कहीं ब्लेम तो लगाते हैं ना। जैसे अगर हमारी दिनचर्या में ऊपर नीचे होता है, हाँ वही, अपनी कमी कमजोरी को छिपाने के लिए, क्योंकि दूसरा मन अंदर में अहंकार बैठा हुआ है कि हमारी प्रतिष्ठा को कहीं दाग ना लग जाए, क्योंकि हर मनुष्य को तो प्रतिष्ठा तो चाहिए होती है ना, अंदर ही अंदर, भले बाहर से नहीं है, लेकिन दूसरों को श्रेष्ठ साबित करने के लिए कि मैं अच्छा हूं, हमारा पुरुषार्थ अच्छा है या हमारे समाज में प्रतिष्ठा है, तो अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए हम ब्लेम गेम लगाते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं। हाँ जी, कमजोर आत्मा की निशानी है। हाँ, और हाँ, उसको हम पकड़ के बैठते हैं। अगर कोई हमको धोखा देता है तो उसको हम पकड़ के बैठते हैं और मौका, मौके की ताक में रहते हैं कि कब मौका है तो किससे भी हम बदला ले, तो वो भी हमको खत्म करना है। वो उसके लिए शुभ भावना शुभ कामना बताया है, और वो देखना है अगर वो लगा रहा है तो कहीं ना कहीं हमने भी लगाया, वो उसको धोखा दिया हुआ है। और कहां कहां ब्लेम गेम होती है, आदत, आदत ही लगाने की, लगाते नहीं, नेचुरल स्वभाव हो गया हुआ है, स्वतः है, सहज पुरुषार्थ। तो ये था कि पहले तो हमने देखा कैसे कैसे कहां कहां सबसे जो आजकल ब्लेम गेम खेली जा रही है राजनीति में है, राजनीति से कितनी प्रभावित हो चुकी है। दूसरा था देखा हमने रिश्तों में कितनी दूरियां बढ़ गई हैं, परिवारों में कितना बिखराव हो गया है, रिश्तों में आपसी सामंजस्य नहीं रहा है। और फिर व्यापार में भी ब्लेम गेम बहुत लगाती है, यहां तक कि हत्या कर देते हैं दूसरे की और दूसरे को फंसा भी देते हैं, कितना ब्लेम गेम खेलते हैं। खेलों में अधिकतर आजकल बहुत ज्यादा होती है, अगर कोई जीत जाता है तो उसके ऊपर आरोप कुछ ना कुछ लगा देते हैं और उसके कई साल बर्बाद हो जाते हैं फिर। तो इस तरह से चुनाव में तो ब्लेम गेम की उत्पत्ति कहां से होती है, उसके घटक क्या हैं, उसके उत्प्रेरक तो देखा हमने, कोई व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, कोई बात हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है, कुछ समय, समय के प्रति हम दोष देते रहते हैं, समय ठीक नहीं है, मुहूर्त ठीक नहीं है, शुभ घड़ी नहीं है। इसलिए बाबा ने उस दिन कहा था ना जन्मपत्री, कि किसी को जन्मपत्री दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी भी कई बार फोन आता है कि हम तो जन्मपत्री दिखाए, हमारा ठीक नहीं चल रहा है आजकल हिसाब किताब, ग्रहचारी बैठ गई है, समय ठीक नहीं चल रहा है अब, है समय ही ऐसा है तो करेंगे क्या। अब कलयुग में तो कलयुग ही होगा ना, तो और क्या होगा, इसमें सत्ययुग थोड़ा होगा। तो परिस्थिति तो आएंगी, अब परिस्थिति आ रही है तो उसको पार करने का हम सोचे ना कि उसको पकड़ के बैठे, जबकि पकड़ के बैठे पता नहीं इतने समय तक चलेगा। अगर बार वाले ने कह दिया जन्मपत्री में अभी एक महीना आपका ऐसा चलेगा, और एक महीना हम पकड़ के बैठ जाएंगे, और भगवान ने कह दिया कि मैंने आपकी जन्मपत्री देख ली है, सब ठीक ठाक है, 79 की मुरली में है, ब्राह्मणों की जन्मपत्री, 12:11 कि तुम बच्चों की राशि कौन सी है, विश्व कल्याणकारी, तुम्हारी पोजीशन कौन सी है, मास्टर सर्वशक्तिवान, तुम्हारा धर्म कौन सा है, ब्राह्मण चोटी धर्म है, तुम्हारी दशा कौन सी है, बृहस्पति बार की दशा है, तो ये सारा उसमें बताया। तुम्हारे भाग्य की रेखा कितनी है, बहुत लंबी है, जो खत्म ही नहीं होती है, तो वो उसमें मुरली में बताया। तो जन्मपत्री किसी को दिखाने के चक्कर में हमारा पुरुषार्थ का समय निकल जाता है, भगवान छप्पर फाड़ के भाग्य दे रहा है और संसार में हम उन चीजों को पकड़ के बैठे हुए हैं। तो ये है समय। फिर कोई संबंधों में आ सकती है, संबंध ही ऐसे हैं, इन संबंधों से हम कैसे छूटेंगे, कहां फंस गए हम इस चक्कर में, तो संबंधों को पकड़ के बैठते हैं, उस पर ही हम ब्लेम माना, उस पर ही आरोप लगा रहे हैं। फिर कोई स्वार्थ हो सकता है, अपने स्वार्थ को भी पूरा करने के लिए हम ब्लेम लगाते हैं। अगर कोई हमारी इच्छाएं हैं जो पूर्ति करनी है, पूर्ण करनी है उनको, तो हम कई प्रकार के दापेश लगाकर उन इच्छाओं को पूर्ति के लिए दूसरों पर ब्लेम लगाते हैं ताकि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। फिर कोई की स्थिति को गिराने के लिए अचानक परिस्थिति आती है या बदले की भावना है, फिर प्राकृतिक आपदा है तो हम ब्लेम लगाते हैं। कोई पद प्राप्त करने के लिए, मौसम है, जानवर है, जानवर आ जाएंगे, आज हमारे तवेले कैसे जाएंगे, कमरे में ठीक है, जानवर भालू विल्लू आ गया तो क्या करेंगे, तो ऐसे ब्लेम लगाते रहते हैं। अब उससे आगे बताया ब्लेम गेम से मुक्ति के घटक। तो पहली बात बताया स्वीकारना क्या है और क्या नहीं स्वीकारना है। दूसरा स्मृति, हमको क्या स्मृति रखनी है। तीसरा समाधान स्वरूप बनना है, ना कि समस्या स्वरूप। और एक बात ही सहानुभूति रखनी है, वो शुभ भावना शुभ कामना में आ जाएगा, सबके प्रति सहानुभूति, शुभ भावना शुभ कामना। और अपनी स्थिति को परखने के लिए ये ब्लेम गेम लग रही है। और साक्षी भाव, शुभ भावना के वाइब्रेशन देने हैं, सहन शक्ति, समस्या समाधान स्वरूप बनना है, स्वोन्नति में व्यस्त रहना है और समरसता का भाव रखना है। तो ये था ब्लेम गेम से मुक्त होने के कुछ कारक। तो समय अनुसार इतना ही चिंतन किया, बाकी तो अभी इसकी 8 सीरीज चलेंगी। हमारे सामने हम पहला वो दूसरा वो तीसरे को ब्लेम कर रहे हैं ऐसे, तो क्या करने का। हाँ, बी सी को ब्लेम कर रहा है, तो हमें कुछ करने करने का है, जो करना है वो ही कर रहा है। बी कमजोर है तो उसको हमको शक्तिशाली बनाने के लिए हमको वास्तव में रोकना है उसको, उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, हाँ में हाँ मिलाना भी बाबा कहते भी पाप है। तो उसको जैसे पहले होता था ना, बड़े दादी और दीदी, अगर कोई समस्या होती थी कंप्लेंट करने जाता था दादी के पास, तो फिर दादी और दीदी दोनों आपस में कहते थे आप दीदी के पास जाओ, सीधा तुरंत उसका निर्णय नहीं करते थे पहले। तो ये जो परिस्थिति आती है, अगर दूसरे के प्रति हमारे मन, हमारे से कोई दूसरे के प्रति बात कर रहा है, तो हमको उसको बताना, स्वीकारना नहीं है उसको, कोई प्रमाणित तथ्य तो हमारे पास है नहीं, इसलिए बाबा कहते सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि सुनी सुनाई बातों पर तो हमारा ये हाल हुआ है, अब कोई बात को हमने देखा ही नहीं है और हमने उसको स्वीकार कर लिया, उसको अपने मन में बिठा लिया, और वो तीसरा व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ करता है और आज हमने उसके प्रति सुन लिया, तो हमारे मन में उसके प्रति ऐसे संकल्प चलेंगे, तो उसको हम स्वीकारना ही नहीं है, क्योंकि जब तक हमने देखा नहीं तो कैसे स्वीकार करें। जैसे ब्रह्मा कुमारी के बारे में पहले क्या कहते रहते थे लोग, लेकिन जब हम इस संस्था में आए तो क्या पता चला, तो देखना और सुनना जमीन आसमान का फर्क, 4 उंगली का फर्क है ना कान और आंख में, तो कितना फर्क होता है उसमें, तो देखना और सुनना बहुत फर्क है। तो जब तक हम चीज को देखे नहीं तो सुनी सुनाई बातों हमको विश्वास नहीं करना। अगर हमने देख भी लिया और सामने वाला ऐसा है भी, तो उसको मुक्त करने का हमारा फर्ज है, ना कि उसको गिराने का हमारा दायित्व है। तो ये चीज है। और प्रश्न? हाँ जी, बड़े हमारे पर ब्लेम लगा देते हैं, तो हमने भी पहले लगाया होगा, पर झेलो उसको, सहन शक्ति। क्योंकि बताया ना, बिना क्रिया के प्रतिक्रिया तो होती नहीं है। तो हाँ जी,
ऐसे भी हमने देखा है, हमारा साथ वो किसी और को ब्लेम कर रहा है, तो विश्वास करेंगे तो हम घाटे में हो जाएंगे, वो हमारा सामने उसको ब्लेम कर रहा है, हम थोड़ी देर के बाद उसको गुलाब का फूल दे रहा
है वो। हाँ, ऐसा भी होता है। माना जो बी है वो सी की, सी पर ब्लेम लगा रहा है हमारे सामने, लेकिन थोड़ी देर बाद हम ए व्यक्ति देखता है कि बी जो सी को गुलाब का फूल दे रहा है, तो वो होता है कि ये होता है गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग, तो हमको उसमें देखना है कि कोई बात नहीं, देखो वो बाहर से कैसा था और अंदर से कैसा है, तो समय पर तो माना उसका स्वार्थ अंदर में छिपा हुआ है। अगर वो गुलाब का फूल दे रहा है और ब्लेम लगाया, ब्लेम उसका सब पे है और फिर गुलाब का फूल दे रहा है, माना अंदर में स्वार्थ छिपा हुआ, उस स्वार्थ सिद्धि के लिए उसको फूल दे रहा। कुछ दिन पहले था ना मुरली में, मुरली के वरदान के अंदर में था कि अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या करते हैं, बहुत सारे बातों को छिपाते हैं, 8-10 दिन पहले वरदान के विवरण में था। तो ये चीज है। और ब्लेम से मुक्त हो गए? और कहां कहां ब्लेम लगता है? हाँ, स्वयं हम अपने ऊपर भी ब्लेम लगाते हैं, स्वयं स्वयं के दोष को पकड़ के बैठते हैं, जो भी हमारी कमी कमजोरियां हैं। या हम आजी बाबा ने कहा कि बीमारियां तो बाहर निकलेंगी लेकिन बाप तुम्हें धैर्य देते हैं। ऐसे भी ख्याल आते हैं कि जो अज्ञान काल में भी नहीं आए, तो इसमें बाबा कहते घबराना नहीं है। तो अपने को पकड़ के बैठते हैं कि मेरे ख्याल तो जाते नहीं है, इतने साल हो गए ज्ञान में, कोई तरक्की तो हो नहीं रही है, हैं? इतना पुरुषार्थ करने के बावजूद कोई परिणाम तो मिल नहीं रहा है। वास्तव में जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं व्यर्थ नहीं जा रहा है, ये कहीं ना कहीं जमा हो रहा है। कोई संस्कार तो हमारे एक बदल रहे हैं ना, भले यहां भी हम बैठे हैं, अगर हम पूरा ज्ञान हमारी बुद्धि में नहीं है, कम से कम थोड़े तो संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं कि अंदर में कुछ तो कुछ बात हमारी बुद्धि में टिकेगी। पहले सुनने के संस्कार तो पड़ रहे हैं, अगर सुनने के संस्कार नहीं होंगे तो सुनाने के संस्कार कैसे होंगे? इसलिए डेली उपस्थिति अनिवार्य है, इधर छुट्टी नहीं करनी। बाबा ने कहा कम से कम भक्त तो बढ़ रहे हैं ना,
ये भी ब्लेम लगाना है
क्या?
यहाँ आपको दिखते नहीं तो एक्शन थोड़ी मन से
ये है मुक्ति की युक्ति। हाँ, कई बार बीमारी होती, बाबा ने कहा अगर बीमार भी है कोई बहुत, उसको स्ट्रेचर पर लेके आ जाओ, मन से उपस्थित है तो पद भी मन से मिलेगा, स्वर्ग मन में मन से ही जाना, फिर भोजन भी आप मन से कर लेना, सारा बात मन से। तो जो चीज मन से करनी है वो तो मन से ही करनी है, ये आपकी बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन जो स्थूल में करनी है उस स्थूल में ही करनी होगी। तो ये है कि अपने ऊपर भी हमको कई प्रकार के जो ब्लेम लगाने, जो बताया इतना पुरुषार्थ करने के बावजूद भी हमारी प्रगति नहीं हो रही, तो संस्कार तो बदलने ना कम से कम। और कहां ब्लेम लगाते हैं, किसके ऊपर? हां जी, यज्ञ को ब्लेम लगाते हैं, यज्ञ की व्यवस्थाओं पर ब्लेम लगाते हैं कि देखो व्यवस्थाएं ऐसी कितनी है, बड़ों पर ब्लेम लगाते हैं। वास्तव में बड़ों की बहुत कुर्बानियां हैं जो हमको अभी दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि हम एक कालदर्शी होकर देखते हैं। जिसमें यज्ञ में उन आत्माओं की जरूरत थी, उन्होंने यज्ञ को सहयोग दिया है, और आज हमको कोई सी थोड़ी सी कमी दिख जाती है तो हम उस एक कालदर्शी होकर उस कमी को देख रहे हैं, लेकिन जिसमें उन्होंने कुर्बानी की है वो कुर्बानी शायद हम नहीं कर पाते, इसलिए उन आत्माओं का पहले पार्ट था, इसलिए वो पहले आई। हम कुर्बानी नहीं है जी, हम भागे थे, अब वापस आए हैं। काली बाबा ने कहा क्यों वापस आए? क्योंकि हट्टी तो एक ही है, जाना का है। तो ये है कि उन आत्माओं को बाबा ने कहा था एक मुरली में शायद 10-11 साल पहले, कि कोई कोई बच्चे सोचते हैं कि बड़े भी ऐसे करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा बाद में आप देखते रह जाएंगे उनके भाग्य, उनके जो पुण्य का पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ का खाता बहुत जमा है, वो जंप मारेंगे और चले जाएंगे और आप देखते रह जाएंगे। तो यज्ञ की व्यवस्थाओं पर या बड़ों जो निमित्त आत्माएं हैं ऊपर नीचे अगर कुछ हमको दिखाई देता तो हम एक कालदर्शी होकर देखते हैं कि इनका निर्णय तो ठीक नहीं है, लेकिन देखते हैं हम समय आने पर वही निर्णय राइट होता है और हमारी सोच में कहीं ना कहीं मिस्टेक होती है। तो हम उन यज्ञ की व्यवस्थाओं पर ब्लेम लगाना ये भी एक बहुत बड़े पाप है और वो हमारे पुरुषार्थ में बाधक बन जाएगा। तो वहां भी हमको ये ध्यान रखना है जो भी व्यवस्थाएं चल रही हैं, क्या ऊपर वाले को उन व्यवस्थाओं का पता नहीं है? माँ बाप ऊपर बैठे हैं तो बाप को तो पता होता है ना मेरे बच्चों को कैसे चलाना है। तो यज्ञ की व्यवस्थाओं को भी बेहतर बनाने के लिए हमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। माया पर ब्लेम लगाते हैं क्या? माया तंग करती है, गलती खुद करते हैं, माया पर ब्लेम लगाती है। तो माया पर ब्लेम नहीं लगाना। हाँ, अपने ही हम कमी कमजोरियों को, अपने विकर्मों को माया का रूप बना देते हैं, माया पर ब्लेम लगाते हैं। और टीचर स्टूडेंट को ब्लेम करता है, स्टूडेंट टीचर को ब्लेम करता है। हाँ, हिसाब बराबर हो गया। तो वो भी ब्लेम नहीं करने का है, क्योंकि बताया ना एक कालदर्शी होकर देख रहे हैं, बाबा ने निमित्त बना के उन आत्माओं को बिठाया हुआ है, तो जरूर कहीं ना कहीं हमारे कल्याण के लिए है। हो सकता है उसमें अकल्याण हमको थोड़ा दिख रहा है, लेकिन बाबा ने कहा अकल्याण के पर्दे के पीछे भी कल्याण छिपा हुआ है। अकल्याण हो ही नहीं सकता, ब्राह्मण बना कल्याणकारी, काली था ना, ब्राह्मण बनना अर्थात भाग्यवान बनना, जो संडे की मूल्य थी, भगवान के बनना माना भाग्यवान बनना, भाग्य निश्चित है, हर सीन कल्याणकारी है। वो तो हमको उस समय लगता है कि अकल्याण है, लेकिन वास्तव में उसमें कल्याण ही कल्याण समाया हुआ है, अकल्याण ब्राह्मणों का हो ही नहीं सकता है। और बस ओम शांति।